ओके शांति, मीठी मीठी ठंडी ठंडी संडे की सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं बाप दादा का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और सचिन भाई जी का जो निमित्त बने, और बाकी सबका जो कहीं ना कहीं से मुझे इस टॉपिक में मदद की जिन्होंने सूक्ष्म रीति से या स्थूल रीति से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आपको। टॉपिक है जिनकी दबी रही धूल में, जिनकी राजा खाए, किनकी जो चोर लूट ले जाए, सफल हो उनकी जो धनी के नाम लगाए। स्टोरी में एक किसान होता है, वो किसान बहुत धनवान होता है लेकिन कंजूस होता है। उसने अपना धन इतना सारा जमा करके रखा रहता है तिजोरी में सिर्फ, तो उसको हमेशा चिंता रहती थी कि और धन कमाऊं। लेकिन उस धन के संचय करने के बाद उसको थोड़ा चिंता भी रहता था, तो उसको सबसे प्रिय था उसको सोना। तो उसने अपनी जो भी जमीन जायदाद थी सब बेच के सोना खरीद लिया उसने, लेकिन वो बात उसने अपने परिवार को नहीं बताई। सोना खरीदते गया, फिर एक दिन सोचा अगर मैं सोना घर में रखूंगा तो फिर चोरी हो जाएगा। तो उसने सोचा क्या करूं। थोड़े दिन के बाद उसका दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपनी जो खेत है उसमें खोद के उसमें रख देता हूं। तो उसने एक दिन रात को जाके खेत में खुदाई की और उसमें सोना रख दिया एक बोरी में भर के, और रोज रात को जाके चेक करके आता था। तो भी उसको चिंता लगी रहती थी, वो रोज रात को जाता था और खोद के देखता था, हाँ निश्चिंत मेरा सोना पड़ा है। रोज यही प्रक्रिया चल रही थी। एक दिन वो एक किसान जा रहा था, वो दला दे, तो उसने एक किसान ने देखा कि ये रोज कहाँ जाता है, जरा चेक करूं। तो उसने चेक किया, मतलब दूसरे दिन उसके पीछे पीछे गया, वो खेत तक गया लेकिन उसके बाजू में नहीं गया, उस एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो पेड़ के पीछे छुपने के बाद उसने सब चीजें देखी, वो क्या कर रहा है देख के खुश हो रहा है, वापस जा रहा है। तो वो भी फिर वापस घर पे चला गया। सेकेंड डे जब उसने खुदाई करके जैसे ही वो जिसका माल था वो गया, उसके बाद वो जो पीछे देखने वाला था किसान, उसने क्या किया, वो खोदा सोना निकाला और लेके चला गया। सेकेंड डे जब भी वो जो वापस आया और देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा सोना कहाँ गया मेरा सोना। ये चिल्लाने की आवाज सुन के गाँव वाले सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उससे पूछने लगे, तो पहले तो वो बता नहीं रहा था क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था। फिर उसने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने किया था और सोना दबा के रखा था लेकिन कोई लेके गया। तो उसमें से एक वृद्ध पुरुष था, वो हंस हंस के आया, बहुत जोर से हंसा उसके ऊपर, और उसने कहा तुम्हारा जो धन था ना, वैसे भी वो चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, वैसे कुछ काम का था ही नहीं वो। जब तुम्हारे पास धन था तब तो तुम्हें केवल कल्पना में ही धन था, वो क्योंकि यूज नहीं कर रहा था, उसके पास कल्पना में था। मेरे पास बहुत सारा धन है, धन तो मिट्टी में ही दबा था, जहाँ सोना था वहाँ एक पत्थर रख लो। उसने क्या कहा उसको, जहाँ सोना था ना अभी वहाँ पे पत्थर रख लो और सोचित रहो यही सोना है। तुम्हारा सोना मिट्टी में दबाकर बेकार पड़ा था, किसी काम का नहीं था, वैसे भी वो पत्थर ही था। तुमने तो धन केवल संचय करने के लिए और देखने के लिए रखा था। इससे एक बात सिद्ध होती है, धन का लालच इंसान को अंधा बना देता है। केवल इतना ही धन सींचिए जितना आपको अन्यथा आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा धन जीवन पूरा खराब कर देता है। जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा धन आ गया तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है। इसमें आज का टॉपिक, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, सफल हो उनकी जो धनी के नाम लगाए। इस कहावत का हम बीके के हिसाब से मीनिंग होता है, अंत समय में स्थूल धन कई तरह से विनाश होगा लेकिन जो अपना धन इस समय परमात्मा के कार्य में खर्च करते हैं उनका धन अनेक जन्मों के लिए सफल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो आज क्या कर रहे हैं सर, धन इकट्ठा करे तिजोरियों में, बैंकों में जमा होता है, तिजोरियों में जमा होता है तो सरकार निकालती है, लेकिन बैंकों में जमा होता जा रहा है। वो अपने इतना मशगूल हो जाते हैं धन कमाने कि अपना खुद का और परिवार का ध्यान ही नहीं रहता है, वो धन के पीछे भागते ही रहते हैं। कोई अच्छी तरह से कमाते हैं, कोई बेईमानी से कमाते हैं, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ धन बेईमानी में ही जाता है या कुछ बीमारियों में जाता है। अपनी आवश्यकता, आज की लाइफ में इतनी आवश्यकता बढ़ गई है कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वो भागते ही रहते हैं। जैसे एक बार सचिन भाई ने बताया था कि दादर स्टेशन पे जाके देखो, मैं तो एवरीडे देखती हूँ, वहां पे आप खड़े रहोगे ना, आपको ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं, आप खड़े रहो, सिर्फ आप अपने आप चढ़ जाओगे। तो पीछे से इतने धक्के देते ना, आप जैसे स्टेशन पे आए, आप स्टेशन पे खड़े हो गए, आपको पीछे से इतना प्रेशर होता है कि आप अपने आप खड़े हो जाओ, डब्बे में जाते, इतना होता है। और एक है अंबरनाथ करके स्टेशन है, वहां से विटी दादर से विटी स्टेशन दादर बीच में, वहां से सुबह जॉब के लिए तो लोग 6 बजे निकलते हैं, 10:30 का जॉब होता है, 6 बजे निकलते हैं घर से, 9 बजे तक 10 बजे तक ट्रैवलिंग में जाता है उनका, 3 घंटा ट्रैवलिंग। अच्छा पापा ने मुझे नहीं दिया वो ट्रैवलिंग वो इतना हो, लेकिन उनका ट्रैवलिंग में जाता है। तो पूरा क्या होता है, वो धन कमाने, अच्छी सैलरी बाजू में मिलती है लेकिन सीएसटी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, तो वहां पे भागते हैं वो लोग इसके लिए। लेकिन हम बाबा के बच्चों को बाबा ने बहुत सेव किया, ऐसे भागदौड़ी दुनिया से अलग कर दिया है, अनेक प्रकार के धन से हमें भरपूर किया है, बेफिक्र बादशाह बना दिया है। स्थूल धन तो क्या, सूक्ष्म धन भी, जैसे स्थूल धन हम कमाते हैं तो हम बाबा के कार्य में लगाते हैं तो बाबा उसका रिटर्न हमें बहुत गुना दे देता है, उसमें माला माल कर देता है, कौड़ी से देकर हम क्या लेते हैं, हीरे ले लेते हैं बाबा से। कितना अच्छा सौदागर है, ऐसा सौदागर तो लाइफ में मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे इसमें एक बहुत अच्छी सी बात याद आती है, मैंने सुना था कि एक बूढ़ी माता ने बाबा को खरबूजा भेजा था, तभी बेगरी पाठ चल रहा था, तो खरबूजा भेजने के बाद बाबा वो खरबूजा देखा, बाबा ने बोला इस माता को सोने का महल मिल जाएगा। तो खरबूजे की कीमत क्या और महल की कीमत क्या, तो बाबा तो बहुत बहुत वर्ड नहीं उनके उनके लिए ज्ञान, ये हो गया स्थूल। अभी ज्ञान धन, ज्ञान धन से हम आत्माओं को जन्म, हम ज्ञान धन करते हैं तो हम किसी आत्मा को जन्म जन्म की प्यासी होती, उनकी प्यास बुझा देते हैं। लेकिन ज्ञान धन सिर्फ नोटबुक में नहीं रहना चाहिए, क्या करते हैं, लिखते हैं नोटबुक में, बस हो गया, वो बंद हो गया, नहीं, ज्ञान धन ना तो नोटबुक में रहना चाहिए ना बुद्धि में रहना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए जितना हो सके। अगर वो बुद्धि में पड़ा रहा तो नहीं ना, बोले रखना नहीं है, उस पे धूल चढ़ जाएगी ना, रखेंगे तो यूज करो उसको, जैसे जैसे हम किताब में लिख के रख देते हैं लेकिन फिर उसको यूज नहीं करते हैं, कहीं बताते नहीं है, तो फिर जैसे किताबों का ढेर रहता है ना, उसपे छोटी सी धूल चढ़ जाती है, अगर उसको देखते नहीं, पन्ने पलटते नहीं है तो पन्नों में भी धूल आ जाती है, वैसे भी बुद्धि में अगर पड़ा रहा तो धूल आ जाएगी उसके ऊपर। हाँ देने से वैसे तो है ना, अगर ज्ञान धन करो तो बढ़ता ही है। बाबा ने हमें कौन से धन दिए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, खुशी का खजाना, कितने सारे खजानों से माला माल कर दिया है, दुआओं का खजाना। लेकिन दिया तो है, फिर माया भी है ना, अगर सबका हम दान नहीं करते ना तो माया उस पर धूल चढ़ा देती है और अपवित्रता और व्यर्थ संकल्प की आग उसे जला देती है। धूल जो ईश्वर परिवर्तन, ईश्वर के परिवर्तन के कार्य में बाधा डालती है, परिवर्तन, ईश्वरीय कार्य के परिवर्तन में बाधा डालती है, धूल है। धूल अहंकार, अहंकार की बुद्धि पर छा जाती है। जैसे कैमरा होता है ना, उसको साफ नहीं करोगे तो धूल आ जाती है, तो कैमरे का फोटो अच्छा नहीं आता है, वैसे ही। और धन का सरकार या इनकम टैक्स खा जाती है। इसमें एक संस्कृत का श्लोक है, बहुत अच्छा है। धन न कियो न तदाची न श्रुते, बले न किए यश्य रिपु न बांधते, श्रुते न कियो न च धर्म पार चरते, किमात्मा न यो न जितेंद्रिय भवते। उसका मीनिंग है, उस धन से क्या जो न देता है न खाता है, उस बल से क्या जो वैरियों को नहीं सताता, उस शास्त्र से क्या जो धर्म का आचरण नहीं करता है, और उस आत्मा का क्या जो जितेंद्रिय नहीं है। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब सफल किया। सच्ची सफलता वही है जो तन मन धन से की जाए, लेकिन संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने वो सफल किया, मैंने ये दिया। अगर वो आ गया तो वो एक बहुत अच्छा है कि अगर हम सोच लेते कि मैंने दिया तो वो कम हो जाता है, उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। एक इंग्लिश की ये है, मनी कैन हैव अ नो, मनी कैन हैव ओनली थ्री स्टेट, चैरिटी, एंजॉयमेंट और लॉस। वन हु है नाइदर डोनेट नो एंजॉय विथ हिज मनी, हिज मनी एंड अप द इन द थर्ड स्टेज। दान, आनंद और नाश, धन की ये तीन गतियां हैं। जो धन न देता है और न आनंद करता है, और उसकी धन की कौन सी तीसरी गति हो जाती, मतलब लॉस हो जाता है। इस समय माया की गुलामी से छुड़ाने के लिए बाबा ने जो भी हमें इस समय माया की गुलामी से छुड़ाने के लिए जो भी सहयोग देंगे बाबा के कार्य में, उस बेहद बाबा की मत पर उनको सफलता होगी। विश्व राज्य अधिकारी के और प्रकृति जीत बन जाएंगे। हमें अपने संकल्प तक भी ईश्वरीय कार्य में सफल करना है। संकल्प मात्र में भी कोई भी व्यर्थ ना आए, तो हमने वो संकल्प भी ईश्वरीय कार्य में सफल किया। दाता के बच्चे हैं, जैसे सुदामा का मिसाल है, क्या दिया, कौड़ी, सॉरी चावल दिए, मुट्ठी भर चावल दिया और महल मिल गया। आधे चावल बोलते आधे पोहे बोलते हैं, पवा जो भी समझो। मेहनत कम सफलता ज्यादा, हमारे यहाँ पे क्या है, मेहनत कम है, बहुत कम है, और सफलता बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन लगाने के बाद संकल्प को मात्र में ख्याल आया तो हमारी भावनाओं में तो कमी हो जाती है। अग्नि है भय और चिंता, लगाया लेकिन उसका भय रहता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। संकल्प मात्र में भी आया तो उसने क्या किया, अग्नि ने उसको चला दिया। रावण है कुसंस्कार और देह अभिमान, देना ही देना है दाता के बच्चे। हीरे मोतियों से जीवन को माला माल कर दिया, सांसारिक अनाशकता इच्छाओं से मुक्त कर बेफिक्र बादशाह बना दिया। अन्य आत्माओं को ज्ञान धन देने के लायक बना दिया। सफलता क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आना। एक बहुत अच्छी सी कविता है, किसकी दबी रहे धूल में, किसकी राजा खाए और किसकी चोर लूट ले जाए। हमें क्या, हमें तो भगवान मिलाए, हम तो उसी के गुणगान गाए। हम ब्राह्मणों की ना दबी धूल में ना ही राजा खाए, हमारी झोली तो ज्ञान रत्नों से भरती जाए। सुख और शांति भी जीवन में निरंतर आए, क्योंकि स्वयं भगवान हमसे मिलने आए। हमें तो बाबा मिला है, हम तो उसी के गुण में गए। मेरी लैंग्वेज अच्छी है तो मैंने एक अच्छी में एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, जो मैं उसका मीनिंग बताऊंगी, लेकिन पहले बोलती हूँ। पैसों 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 करे ने पैसे पाछड़ न बच, भगवान आया ही हेडा हले वच। यात्रा न तो जी घर अने समसान जे वच्चे जी है, यात्रा तो जी घर अने समसान जे वच्चे जी है, तब पर पैसे पाछड़ कोला करिए तो हाय है। अन जिंदगी में भगवान जी कार्य में लगा है, जिंदगी में भगवान जी हे जिंदगी तो जी भगवान जी कार्य में लगा है। ये कच्ची है, सिंधी और कच्ची दोनों मिक्स है। हाँ कच्ची 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 कच्छ गुजरात। अच्छा ओम शांति। हाँ सॉरी हिंदी उसका है। हम पैसा पैसा करते ना, हम मनी मनी करते ना पैसा पैसा, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारी यात्रा कितनी है, घर से शमशान तक इतनी ही यात्रा है, इतनी ही है, ज्यादा यात्रा नहीं है हमारी। किसी का घर शमशान से बहुत दूर होता है, लेकिन किसी का नजदीक होता है। यात्रा उतनी ही है, वो भी हम खुद नहीं चलते हैं, हमें कोई लेके जाते हैं। फिर भी उसका मीनिंग है तोपन पैसे पाछड़, मतलब पैसों के पीछे क्योंकि हाय हाय करता है, हाय मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ही जिंदगी मतलब ये लाइफ भगवान के कार्य में जो लगा है उसकी सफल हो जाए। अच्छा कौन शांति, हमें तो भगवान ओके। हमारा शरीर का नाम है दीपाली, दीपाली भानुशाली। हम जॉब करते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। ज्ञान हमें हमारे ऑफिस का रूल से, मेरे जो बॉस हैं वो 17 साल से ज्ञान में है, तो हमारे ऑफिस का रूल से कि जो भी ऑफिस में आए उसको पहले कोर्स करना है, फिर उनको आगे का। आए 5 दिन ऑफिस में ज्वाइन हुए, अगर वो चला जाता है 5-10 दिन में तो ठीक है, बाबा का ज्ञान पहले आए, उनको कोर्स करना है 7 डे का, फिर उस क्योंकि हमारे ऑफिस में कोई नॉनवेज ऐसे कुछ अलाउड नहीं है, तो उसको पहले ये चीजें बतानी है। तो मेरा वो काम में हो जाता है उसको कोर्स करवाने के लिए लेके जाना, और ये तो मुझे वहां पे ही ज्ञान मिला। एक्चुअल में मेरे फैमिली में कोई ज्ञान में नहीं है, मैं अकेली चलती हूँ क्योंकि वो कट्टर गुज्जू है इसके लिए गुज्जू गुजराती कट्टर गुजराती गुजराती है कट्टर गुजराती गुजराती होते हैं ना हमारी मतलब हमारे यहाँ पे कन्याओं का बहुत मान है। आज भी मेरे डैडी, मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन है, मेरा नहीं अभी तो, मेरा जब मैं बीके बनी तब से उन्होंने मेरा पैर पड़ना बंद कर दिया। मेरी छोटी बहन अभी भी सुबह उठ के पहले हमारे पैर पड़ते हैं, और हमारी इतनी पूजा होती है कि नवरात्रि में हमारे पैरों के पानी जो होता है उसको पीते हैं। इतने तक भक्त वो है, कन्याओं का मान बहुत ज्यादा है। कन्या बोलेगी तो वो करना ही है बाप को, इतने तक है। लेकिन जब से मैं बीके बनी तो मेरे पापा ने बंद कर दिया सब नहीं, ज्ञान तो मुझे 8th स्टैंडर्ड में मिला था। मैं जब भी 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं 10 साल के लिए हॉस्टल में गई थी पढ़ने के लिए। एक्चुअली मेरे पापा ने मना किया था कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो छोड़ दे। तो मैंने ठीक है, तो मैंने हमारी ज्ञाति के हॉस्टल से बात की, 8th स्टैंडर्ड में थी, छोटी थी, तो भी मैंने बात की समाज में। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलाई क्योंकि मेरा 2nd या 1st रैंक आता था, तो स्कॉलरशिप दिलाई। और गुजरात से स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तभी 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी हमारे वहाँ पे हॉस्टल में एक छोटे से संडे होता है, वहाँ पे व्हाइट कपड़े किए हमारे एक डॉक्टर ये है वसंत भानुशाली जो बॉम्बे में है, उन्होंने वो दीदी को लाए थे हॉस्टल में, संडे था। तो हमने तभी थोड़ा सा बीच, बाबा बोलते ना बीच पड़ गया था सिर्फ, वो अच्छा लगा था उनका लेक्चर जो भी क्या बोला था याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। तो तभी बीच पड़ गया था, फिर जब ऑफिस ज्वाइन किया तो झाड़ आ गया। हाँ वो है ना, याद करती हूँ ना तो बहुत फीलिंग आती है, तो मैं उस चीज को याद ही नहीं करती हूँ। मुझे उनको नहीं आती है, मुझे आती है, वो दर्द होता है फिर कि खाली फोड़ के वो लोग मुझे इतना बोलते हैं, वो पास को याद नहीं करते क्योंकि उनका भी ये नहीं है। बाबा बोलते हैं
एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी और मैंने मना कर दिया था तो वो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गया था समाज से, तो इसके लिए बाकी तो मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ और फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर आज हम जा रहे हैं, सॉरी आज हम जा रहे हैं। हमने सीए नहीं किया है लेकिन इंश्योरेंस कंसल्टेंट मतलब वो इंश्योरेंस के साथ उनको कंसल्ट भी करते हैं कि आपको अपना जो पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, पूरा दिन वही चलता है। मतलब हाँ मैं नहीं, बीच मेरा बहुत बहुत अच्छा है वो एक छोटा क्योंकि लेकिन क्लाइंट्स पी के नहीं है ना, लेकिन क्लाइंट्स पी के नहीं है ना मेरे, वैसे मैं मेरा फील्ड वर्क ज्यादा होता है तो नहीं क्लाइंट्स नया क्लाइंट है आपको कैसा भी मिलता है ना, लेकिन सबसे पहला रूल्स वो भी है क्लाइंट को जाके ये चीज बताना है कि हम बिके हैं और उनको डील फाइनल हो या ना हो हमें उनको बाबा का परिचय देना है और एक बाबा की पेन गिफ्ट करके आना, ये हमारे ऑफिस का रोल है तो वो चीज अपने आप हो जाए और लकीली बहुत अच्छा होता है। मैं जब भी जाती हूँ ना मेरा खुद का अनुभव है, मैं जब भी मैं जानती नहीं हूँ उस क्लाइंट को, पहचानती भी नहीं, थ्रू थ्रू आता है तो मैं जब जाती हूँ ना तो जस्ट उनको पूछती हूँ ऐसे क्या है उनका, लेकिन जब भी जाके पहले तो व्हाइट ड्रेस कभी कभी होता है लेकिन बैच होता है और मेरे बुक्स जो भी रहेंगे ना उस पर बाबा का स्टिकर लगा रहेंगे, मैं बुक्स बहुत रखती हूँ तो जब भी जितने भी रहेंगे ना उस पर बाबा का स्टिकर लगा तो उसको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये कहीं और से, और मालूम नहीं वो खुद ही बोलता है कि आप आए तो अलग ही फीलिंग आता है, तो वो सबसे बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि उसका माइंड तुरंत चेंज हो जाता है, वो उसकी नजरिया रहता है जो भी बोलो वो चेंज हो जाता है और वो बहुत अच्छे से बात करता है और इतना बोलते हैं कि आप तो बीके हो ना तो आपको हम अपना जो भी धन का जो भी बताएंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आप किसी को बताने वाले नहीं हो तो बहुत विश्वास करके, तो इसके लिए लेकिन कोई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं बहुत आइडियल भी होते हैं बहुत, लेकिन उसको बाबा का परिचय देते हैं तो थोड़े शांत हो जाते हैं। मैं पहले बाबा को बोलती हूँ मॉर्निंग को, बाबा आपका क्लाइंट है आपको संभालना है मुझे कुछ नहीं करना है, तो डील फाइनल भी होती है अच्छा वो भी होता है। एक्चुअल में मेरा अमृत वेला इतना होता है, इतना पावरफुल होता है तो बहुत पावरफुल होता है क्योंकि मेरा जॉब का टाइमिंग और मेरा जो है नहीं बाहर का नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरा 5 o'clock को अमृत वेला होता है, मेरा 5 o'clock का अमृत वेला होता है, 5 बजे उठती हूँ मैं पांच बजे हाँ हम 5 बजे उठते हैं योग के पास, योग की फिर हमारा मतलब अमृत वेला करने के बाद हम जो भी सेंटर की सर्विसेज रहती है वो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मेरा 3 रोल होता है, एक घर में बेटी का है और बड़ी बहन का है, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर फैमिली की, सेकंड मेरा मेरे ऊपर मेरे बाबा के ऊपर स्थूल धन की तो मेरे ऊपर है, उससे बाबा के ऊपर भी है क्योंकि मैंने बाबा पे छोड़ा है सब, हाँ उनके ही है क्योंकि मेरे डैडी जिसकी पूजा करते हैं ना पहले मैं उसके बहुत भक्त थी, जैसे किसी ने सुना होगा आशापुरा, सुना है किसी ने ये नाम उस, हाँ आशापुरा माता, मैंने बहुत भक्ति की है यहाँ तक कि इतनी भक्ति की कि पैरों में छाले भी पड़ गए हैं चलते चलते, उसका मंदिर इतनी ऊंची पे है ना, सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं नवरात्रि में जाने का और रात को 11 बजे पहुंचते, बीच में कहीं पे भी स्टॉप नहीं, आपको कंटिन्यू चलना है बिना चप्पल के, या चप्पल पहन के भी चल सकते हैं। वो जो सचिन सर ही आते हैं मेरे को, क्योंकि हमारे ऑफिस में एक है सचिन सर ही होता है मेरा सचिन भाई ने बताया था कि वो लोनते लोनते जाते हैं ना, मतलब गुलाटियां खा के या इससे घुटनों से या हाथ में हाथ में कंकु लेते हैं, और हर जगह पे जहाँ पे पैर रखेंगे ना वहाँ पे कंकु लगाएंगे। हाँ, तो उनको बहुत रहता है। तो मेरे पिताजी उनकी बहुत भक्ति करते हैं, हमारे पूरे परिवार में उनकी भक्ति होती है, लेकिन उसका कोई मूर्ति नहीं है। आप अगर नेट पे सर्च करोगे ना आशापुरा करके, वो मूर्ति नहीं है, वो पिंड है और उसकी 12 आंखें हैं। वो पिंड है और उसकी 12 आंखें, तो उनकी बहुत भक्ति करते हैं। तो क्या होता है, सुबह मुझे गाली मिलती है और शाम को मुझे गाली मिलती है और सुबह मेरी पूजा होती है क्योंकि मेरे पापा बहुत, उसके लिए नहीं, लेकिन हाँ क्या होता है, मैं क्लास जाती हूँ, क्लास के बाद रिटर्न आती हूँ तो चालू रहता है उनका, अभी जाके आई, अभी बस ये करेगी वो करेगी, कंटिन्यूस चालू रहता है उनका। टॉर्चिंग बहुत ज्यादा देती हूँ, इसलिए तो बहुत चिंतित हो गए, बहुत ज्यादा देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार से रखा है, क्योंकि पूजा की है ना मेरी। तो
शांति।